रात का खाना हवेली के बड़े डाइनिंग हॉल में लगा था। पीली रोशनी वाले पुराने झूमर की मध्यम चमक में लंबी मेज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, खानदान के बीते हुए चेहरों की गवाह, आज भी वैसे ही चुपचाप सब कुछ देख रही थी। मेज के एक सिरे पर सुषमा देवी अपनी तयशुदा कुर्सी पर बैठी थी। उनकी कुर्सी बाकियों से जरा ऊंची और भारी थी, जैसे उनके रुतबे की याद दिलाने के लिए। ठीक सामने मेज के दूसरे सिरे पर विश्वनाथ की कुर्सी खाली पड़ी थी। कुर्सी खाली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी सबको खटक रही थी। दो दिन के लिए शहर से बाहर गए था, ऑफिस के काम से। यही बात सब जानते थे, मगर कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था। श्यामली और मधु चुपचाप खाना परोस रही थी। मधु के हाथों में बरसों की आदत थी, रोटियां गिनती में, कटोरियां सही जगह, बिना आवाज के। श्यामली के हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि चेहरे पर कुछ न झलके। पहले शकुंतला के सामने थाली रखी गई, फिर रम्या, फिर विशाल और आर्यन। अदिति के सामने थाली रखते वक्त श्यामली की नज़र एक पल को उसके चेहरे पर ठहर गई। अदिति की आंखों में वही थकान और उलझन थी जो कमरे में दाखिल होते वक्त थी। रत्ना देवी आखिरी थी और फिर सुषमा देवी। श्यामली ने ध्यान से परोसा, दाल, लौकी की सब्जी, चावल, रोटियां, सब वैसा ही जैसा सुबह बताया था, नमक न बातुला, मसाला हल्का। सुषमा देवी ने थाली की तरफ देखा, कुछ नहीं बोली, बस चम्मच उठाया। मेज पर कुछ पल के लिए सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाजें थीं, चम्मच का दाल में डूबना, रोटी का टूटना, पानी के गिलास का उठना। श्यामली दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर पल उसे लग रहा था अब कुछ कहा जाएगा, अब कोई कमी निकाली जाएगी। सुषमा देवी ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, न तारीफ न नाराजगी। तीसरा कौर लेते ही उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। श्यामली की सांस थोड़ी ढीली हुई। सब लोग खाना शुरू करें, सुषमा देवी ने सख्त आवाज में कहा। बाकियों ने भी खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुषमा देवी ने दाल का कटोरा जरा पास खिसकाया, फिर रोटी का एक और टुकड़ा तोड़ा। दाल, उन्होंने धीरे से कहा। श्यामली की रगों में जैसे करंट दौड़ गया। दाल ठीक बनी है, सुषमा देवी ने कहा। बस इतना, श्यामली ने सिर झुका लिया। दिल ने चैन की एक हल्की सांस ली, लेकिन वही चैन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। सुषमा देवी ने चम्मच प्लेट में रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। आजकल, उन्होंने बात शुरू की, घर के खाने का स्तर, वाक्य अधूरा छोड़ा। शकुंतला ने तुरंत गर्दन सीधी कर ली। रत्ना देवी चुप रहीं। पहले, सुषमा देवी ने आगे कहा, हाथों में अपनापन होता था, स्वाद में संस्कार होते थे। उन्होंने फिर एक कौर लिया। अब आवाज में हल्की सी तलखी आ गई। बस रेसिपी होती है, ना नाप कम ना ज्यादा, सब कुछ किताबों जैसा। श्यामली के कान सुन हो गए, वो समझ गई, तारीफ होते हुए भी बात उसी पर आ रही थी। खाना बुरा नहीं है, सुषमा देवी ने साफ कहा, पर दिल से नहीं बना। मेज पर सन्नाटा छा गया। अदिति ने धीरे से चम्मच रखा। आर्यन ने एक नज़र श्यामली की तरफ देखी, फिर वापस प्लेट पर। आजकल की लड़कियां, सुषमा देवी बोली, सब कुछ सीख लेती हैं, पढ़ाई, नौकरी, हिसाब किताब। उन्होंने रम्या की तरफ देखा, फिर शकुंतला की ओर। लेकिन घर का स्वाद, वो नहीं आता। रत्ना देवी ने हल्की सी खांसी ली। दीदी, उन्होंने संभल कर कहा, खाना तो सही बना है, आपने खुद। मैंने कहा बुरा है, सुषमा देवी ने तुरंत टोका। रत्ना देवी चुप हो गई। मैं बस ये कह रही हूँ, सुषमा देवी ने बात जारी रखी, कि अच्छा होना और दिल से होना दो अलग बातें हैं। श्यामली का सिर झुका हुआ था, उसकी उंगलियां आपस में भिंज गई थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था, खाना पसंद आया है, लेकिन उसे फिर भी नीचा दिखाया जा रहा था। विशाल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, मुझे तो लौकी की सब्जी बढ़िया लगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या पता, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा क्या होता है। विशाल चुप हो गया। आर्यन ने धीरे से कहा, खाना सादा है पर ठीक है। सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा। ठीक, उन्होंने शब्द दोहराया, बस ठीक। फिर उन्होंने प्लेट आगे सरकाई। श्यामली, उन्होंने नाम लिया। श्यामली जैसे चौंक गई, वो तुरंत आगे आई। जी मौसी जी, कल से, सुषमा देवी बोली, मेरे लिए अलग से खाना बनेगा। श्यामली का दिल बैठ गया। जी हाँ, उन्होंने बिना देखे कहा, मेरी उम्र है, मेरी पसंद है, सबके साथ नहीं खा सकती। रत्ना देवी ने कुछ कहना चाहे लेकिन रुक गई, और सुषमा देवी ने आगे जोड़ा, ये जो आज का खाना है इसे आदत मत बना लेना। श्यामली ने धीरे से कहा, जी ध्यान रखूंगी। ध्यान काफी नहीं, सुषमा देवी ने वही सुबह वाला वाक्य दोहराया, हाथों में एहसास होना चाहिए। फिर उन्होंने पानी का गिलास उठाया। मधु, आवाज थोड़ी नरम हुई, मेरे कमरे में चाय भिजवा देना। जी मालकिन, मधु ने कहा। सुषमा देवी उठी, बिना किसी की तरफ देखे धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही माहौल जैसे ढीला पड़ा। श्यामली वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखें झुकी हुई थीं, मगर भीतर कुछ टूट चुका था। अदिति ने उसे देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति थी। तुम बैठ जाओ, अदिति ने धीरे से कहा। नहीं, श्यामली ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली। दीदी का मिजाज तुम सब जानते हो, उन्होंने कहा, दिल की बुरी नहीं है, बस वाक्य पूरा नहीं किया। शकुंतला ने फुसफुसाते हुए कहा, खाना तो उन्हें पसंद आया था। हाँ, रम्या ने भी सिर हिलाया, पर कहना नहीं आता। श्यामली ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप प्लेटें समेटने लगी। उसके कानों में सुषमा देवी के शब्द गूंज रहे थे, दिल से नहीं बना, हाथों में एहसास नहीं, उस दिन तुमने जो किया था। उसने प्लेट उठाई, लेकिन हाथ काम क्या। आर्यन ने आगे बढ़कर प्लेट थाम ली। संभल कर, उसने धीमे से कहा। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सवाल थे, डर था और एक अनकहा बोझ। आर्यन ने कुछ नहीं पूछा, बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो मैं समझ रहा हूं। लेकिन असल में कोई भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि सुषमा देवी को खाना पसंद आने के बावजूद हर शब्द में जहर क्यों था, और कि श्यामली का बीता हुआ वो कौन सा दिन था जिसका खामियाजा अब इस हवेली में हर रोज वसूला जाना था।